खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो हमारे लिए आईना है अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, आएं चंद लम्हों के लिए खुदा के हुज़ूर झुक जाएं और उसे पुकारें, क्योंकि वो सचमुच अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, क्योंकि वो अपने कलाम में फरमाता है यसाया नबी की मार्फत के खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारे गुनाहों और बदियों और बुरी बातों के बायस वो तुमसे दूर है। इसलिए अपने अपने दिल की हालत का जायज़ा लेंगे। अगर किसी किस्म की परेशानी, फिक्र, सोच, ख्याल, अबलीसी सोचें हमें खुदावंद की तरफ से बहकाती हैं तो खुदावंद को पुकारेंगे कि खुदा बाप तू हमें हिकमत और दनाई दे ताकि अपने मुखालफ की चालों पर और उसके तमाम हटकंडों को जो हमारे गिर्द बनाता है उसे तोड़कर यीशु नाम में फतेहमंद ज़िंदगी बसर करें। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा कलाम तूने इसीलिए बख्शा है कि हम उसमें से सीखें, और यीशु मसीह की ज़िंदगी और दूसरे ईमानदारों की ज़िंदगी तूने हमें इसलिए मिसाल के तौर पर दे दी हैं जिनमें बहुत सी बेहतरीन मिसालें हैं और बहुत से ऐसे लोगों की मिसालें तूने दी हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद जिन्होंने बरकत को छोड़कर लानत को चुना और तूने कहा कि ये बनी नू इंसान के लिए नमूना है। सो खुदा बाप आज जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से सीखें तेरा पाक रूह हमारे दिलों की ज़मीन पर उसे बोए और 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे 13वीं आयत तक। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल लिखते हुए कहता है जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी और भरोसे के साथ रसाई। पस मैं दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातर सहता हूं हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हमने 12वीं आयत में देखा कि पालूस रसूल उस बात के बारे में बयान करता है कि ईमानदारों को यीशु मसीह में ये हक, ये इख्तियार, ये बरकत, ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो यीशु मसीह के सबब से उसके ऊपर ईमान लाने के बायस ऐसी दलेरी और ऐसी यकीन दहानी के बारे में बताए गए हैं कि वो खुदावंद की हजूरी में जा सकते हैं। और यीशु मसीह ने खुद भी अपनी ज़मीनी खिदमत में ये बात कही थी कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान आ मौजूद हूँगा। सो जब हम ईमानदार यीशु मसीह के नाम में पालूस जैसे हदायत करता है खुदा बाप को पुकारते हैं तो रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से हम उसकी हजूरी के सामने आ जाते हैं, उसकी हजूरी में चले जाते हैं। बेशक हम इस ज़मीन पर हैं लेकिन रूहानी आलम में हम उसके तख्त के सामने होते हैं। इसलिए वो कहता है इस दलेरी को इस्तेमाल करो। सो हमने दलेरी के तलक से दानियल की ज़िंदगी को, उसके दोस्तों की ज़िंदगी को देखा था, फिर पतरस और यूहन्ना की ज़िंदगी को देखा कि उन्होंने दलेरी से खुदावंद यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम बयान किया उन हाकमों के सामने, सदूकियों के सामने और सरदार काहिनों और दूसरे तमाम लोगों को जो उनको रोकते थे, उन तमाम लोगों की धमकियों को जो धमकियां देते थे उनको भी उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप तू इनको दूर कर। सो उसी इख्तियार में पालूस रसूल उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आगे उनकी हौसला अफजाई के लिए कहता है 13वीं आयत में। ये वो 12वीं आयत में हमने बातें सीखी थी, दलेरी, भरोसा, यकीन, एतमाद, पूरा इख्तियार यसु मसीह में यसु मसीह के लोगों को हासिल है कि वो जब चाहें खुदा की हजूरी में खुदा बाप से बात कर सकते हैं। सो आज 13वीं आयत में पालूस रसूल ईमानदारों को उनकी हौसला अफजाई के लिए कहता है, पस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातर सहता हूँ हिम्मत ना हारो। पालूस रसूल जब उसने ये ख़त लिखा, वो कैद खाना में, हमें याद रखने की ज़रूरत है, और वो जिन लोगों को लिख रहा है वो उस दौर के वो लोग थे, उस शहर के रहने वाले थे जिसे इफ्सस कहा जाता था। इफ्सस शहर कारोबारी तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर था। इफ्सस शहर में सबसे बड़ा मंदिर पाया जाता था जिसे इर्तमस देवी का मंदिर कहा गया था, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे में गिना जाता था। तो पालूस रसूल ने 2 साल इफ्सस में खिदमत की, वहाँ पर रहा, और सबसे पहले उसने जो बंदे मुकरर किए थे, एक ख़ानदान को मुकरर किया था जिसका हमें ज़िक्र मिलेगा ईमाल की किताब में। जब पालूस गया तो वहाँ पर किरमस बेचने वाला एक ख़ानदान था जिसका नाम परसिकला और अकूला था, ये दोनों खावंद और बीवी थे। इनको पालूस रसूल ने वहाँ पर मुकरर किया कि तुम रहकर वहाँ खिदमत करना। पालूस रसूल उनके पास गया और जाकर देखा कि उस इलाके के लोगों को क्या ज़रूरत है, उस इलाके के लोगों की ज़िंदगी में कौन सी कमी है, और वो कमी थी यसु मसीह की। तो पालूस 2 साल वहाँ पर रहा और उसने वहाँ पर रहकर खुदावंद यसु मसीह की मनादी की, यसु मसीह की मनादी की। और जब वो मनादी कर रहा था तो इर्तमस देवी के बनाने वाले जो मंदिर की तस्वीरें थी, और ख़ासकर इर्तमस देवी का जो बुत था, मुजस्मा था, उस दौर में सुनार होते थे जैसे आज के दौर में भी हैं, वो बड़े ही कारीगर और माहर लोग थे। वो क्या करते थे, इर्तमस देवी के मुजस्मे और उसकी तशबीह या उसकी सूरत बनाकर इफ्सस शहर में बेचा करते थे, और उनका कारोबार बहुत ही अच्छा था, सोने के बुत बनाकर बेचते थे। तो पालूस रसूल ने जब उस वाहद खुदा के बारे में जो मुर्दों में से जी उठा, उस वाहद खुदा के बारे में जिसे लोग नामालूम खुदा समझकर इबादत कर रहे थे, उनको बताया तो उनकी आंखें खुल गई। इसीलिए कल हमने देखा था कि पालूस रसूल अथीने में था और अथीने के लोगों को उसने बताया कि जिस नामालूम खुदा की तुम इबादत करते हो, मैं उसी की तुम्हें खबर देने को आया हूँ। और उसका नाम उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसें दी, जिससे हर एक नेहमत और बरकत जारी होती है, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो यसु मसीह है। सो वो ये बातें हैं जो पालूस रसूल को सामना थी जब वो इफ्सस में था। 2 साल वहाँ पर रहा और 2 साल रहकर उसने वहाँ पर खिदमत की। उसकी खिदमत को बहुत सी मुखालफत का सामना था, उसकी खिदमत को बहुत से गैरों से बातें सुनने का सामना था। इसलिए खिदमत, हमने पहले भी देखा था, पालूस रसूल कहता है कि खिदमत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तब होगी जब हम अपने जोर में करेंगे, नामुमकिन तब होगी जब हम खुदावंद को छोड़कर अपनी तरफ अपना ध्यान करेंगे, लेकिन मुमकिन तब होगी जैसे पालूस रसूल कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी हिम्मत, वो कहता है, कभी नहीं हारेगी क्योंकि मेरी हिम्मत का मंबा और कुवत देने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसलिए पालूस रसूल 13वीं आयत को, इससे पहले कि हम इसमें से सीखे, ज़रूरत थी कि आप तक इसे पहुंचाया जाए कि पालूस रसूल जब इसे लिख रहा था उसका पस मंज़र क्या था, कौन से हालात थे, कहां पर वो था, किन बातों का उसे सामना था, कौन सी मुखालफत थी। तो उन सब को जो इफ़सस में रहते थे उनको उसने ख़त लिखा और कहा कि पस मैं दरख्वास्त करता हूँ। लफ्ज़ दरख्वास्त का निकला है यानी कि मैं मिन्नत करता हूँ, तुम्हारे आगे मैं ये अपील करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से, वो तमाम मुसीबतें जो से इर्तमस देवी के उन पुजारियों से, रूमी हुकूमत ने जब उसे कैद खाना में डाल दिया, उनसे जब हर दिन एक कैदी के साथ उसे हथकड़ी लगी रहती थी, ये रूमियों का क्या था, तरीकाकार था। हमारे तरह नहीं कि एक बड़े कमरे में कैदियों को बंद कर दिया, नहीं, रूमियों का जो तरीकाकार था वो क्या था, हर कैदी के साथ एक सिपाही या हर सिपाही के साथ दो तीन कैदियों को हथकड़ी। तो पालूस रसूल के साथ हथकड़ी के साथ हथकड़ी लगी हुई उस रोमी सिपाही की मौजूदगी हर वक्त मौजूद है। तो पालूस रसूल उनको कहता है कि मेरी उन मुसीबतों के सबब से इफ़सस के रहने वालों, तुम्हारी हिम्मत ना हारे, जो मैं तुम्हारी खातर सहता हूँ उससे तुम ना घबराना। क्यों? क्योंकि हिम्मत जब हारोगे तो तुम्हारा दिल कमज़ोर होगा, जब तुम्हारा दिल कमज़ोर होगा तो तुम अपनी तरफ देखोगे ना कि खुदा की तरफ देखोगे। सो मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें कि पालूस रसूल अपनी मुसीबतों पर नहीं बल्कि पालूस रसूल चाहता है कि तुम उस इज़्ज़त, उस फल, उस बात की तरफ निगाह करो जो तुम्हारे हल चलाने से, तुम्हारे खिदमत करने से, तुम्हारे कायम रहने से, तुम्हारे खड़े रहने से यीशु मसीह में तुमको मिलेगा। सादा सी मिसाल है, अगर किसान हिम्मत छोड़कर अपने घर बैठ जाए तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। सो मेरे साथ चंद एक हवाला जात निकालें हिम्मत ना हारने के सबब से। दूसरा करंथियों 4 बाप उसकी पहली आयत, दूसरा करंथियों 4 बाप उसकी पहली आयत में खुदावंद का बंदा पालूस रसूल यही बात कहता है कि हमें दर्जा ब दर्जा खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल और सूरत पर, लम्हा ब लम्हा उसकी सूरत पर ढलने की, तब्दील होने की ज़रूरत है। और इसलिए 4थी आयत में कहता है, पस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली। पालूस रसूल इस बात को कभी भी नहीं भूलता कि ये उसके लिए अजाज है, वो इस बात को समझता है कि ये उस पर खुदा का रहम है कि उसे खिदमत करने को ये जिम्मेदारी मिली। वो कहता है पस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में अमेज़िश करते हैं बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। क्रंथस की कलीसिया में उसे जो सबसे बड़ा मसला था, झूठे लोग आकर उसकी बारे में, उसके पीछे उसकी क्या करते थे, हौसला फजाई के बजाय उसे नीचा करते थे कि फलां पादरी, ओ पालूस उसका बोलना देखा आपने, वो कैसे अख्तियार के साथ बोलता है, वो कैसी बातें कहता है, वो अजीब सा है, वो टेंटों का काम करता है, उसके पास तमोथियस है और दूसरे लोग हैं, उनके पास बहुत सा पैसा है, वो अपनी ही गुलछड़ियों में उड़ाता, बहुत सी बातें कह सकते हैं। लेकिन पालूस रसूल कहता है कि मैं اپنے چال چلن سے، اپنی تمام زندگی سے خدا کے کلام کو آزماتا نہیں، اسے غلط ملط مروڑ کر نہیں بیان کرتا، بلکہ حق سے اور خدا کے روبرو، یعنی کہ خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا خوف مانتے ہوئے اپنی زندگی سے یہ ظاہر کرتا ہوں کہ سننے والے کے دلوں میں نیکی بیٹھے۔ سو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم پر یہ رحم ہوا ہے، اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس لیے ہمیں اپنے دل کو کمزور ہونے نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو۔ ہماری ہمت تب بنے گی، ہمارا حوصلہ تب بڑھے گا جب ہم دعا میں اسے پکارتے رہیں گے، جب ہم دعا میں اس سے قوت اور طاقت مانگتے رہیں گے۔ جیسے ہم نے کل جب پطرس اور یوحنا صدر عدالت میں پکڑے گئے، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو بہکایا گیا، ان کو کہا گیا کہ تم اپنا ذہن بدل لو، یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرو۔ یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف یسوع مسیح منادی ہی نہ کرو، بلکہ خاص طور پر یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرو۔ منادی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں جو اس کے مخالف ہیں، یسوع مسیح کا نام، نام کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کیونکہ نام سے ہماری پہچان ہے اور پہچان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھیجنے والا کون ہے۔ سو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا تھا، دعا کی بات سکھاتے ہوئے، کہ تمہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ایک اور آیت پڑھیں گے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 18 باب، اس کی پہلی آیت۔ ہمت نہ ہارنے سے مراد یعنی کہ تمہارا دل کم نہ ہو، تم اپنی امید نہ چھوڑو، تم جسمانی طور پر کمزور نہ پڑ جاؤ، بلکہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو اسے کرو، اور جو خدا کرتا ہے اسے کرنے دو۔ تو پالوس رسول بھی اس بارے میں کہتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، اور یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا اس کہانی میں، اس واقعہ میں، قاضی کو پیش کیا گیا، اس بیوہ کو بتایا گیا جو ہمت نہ ہاری۔ ہم ایمانداروں کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان سے کہا، کن سے؟ اپنے شاگردوں سے۔ 18 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی۔ آپ تمثیل خود پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ہوا، لیکن جو ہم غور کر رہے ہیں، ہمت نہ ہارنا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا تھا جس رات وہ پکڑوایا جانا تھا، کہ پطرس، جب تو واپس لوٹے تو بھائیوں کی حوصلہ فزائی کرنا، جب تو واپس لوٹے تو ان کی ہمت بڑھانا، جب تو واپس لوٹے تو ان کا حوصلہ بڑھانا۔ سو ہم سب مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے پالوس کی زندگی سے یہ سبق خاص الخاص سیکھتے ہیں کہ پالوس رسول ایسا مشنری، جسے کہتے ہیں، کہ ایسا خدمت گار بندہ رہا ہے، جس کی زندگی نہ صرف کہ یسوع مسیح کی تابعہ تھی، بلکہ اس کی زندگی قوموں کے لیے برکت کا باعث بنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی برکت کا منبع اور اس کا پہچاننے والا کون تھا؟ یسوع مسیح۔ سو پالوس رسول اس لیے کہتا ہے، میں درخواست کرتا ہوں تاکہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ وہ ان کو سادہ طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سبب سے جو مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا تمہیں ہیں، اس میں ہمت بھی نہ ہارو، بلکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ اگر کہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں فلاں مسیح کا پیرو ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ عزت کی بات ہے کہ کسی نہ کسی سبب سے لوگ یسوع مسیح کے پیروں کو اور یسوع مسیح کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمت نہ ہارو کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ سو ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں بھی دل میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنے میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے، بلا ناگا خداوند کو پکارنا چاہیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں قومیں تجھے میراث میں دوں گا، تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، تو مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ سو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور قوموں میراث میں دینا، جواب دینا اور اجر دینا خدا کا کام ہے۔ سو آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے حکمت اور دنائی مانگے کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنے کی قوت اور طاقت دے۔